खूब आपने राज्य चला दिया, अब तो एक काम करो, ये जो बाहर खड़ा खड़ा हल्ला कर रहा है सुग्रीव, इसको तो केवल राज्य चाहिए, इसको अपनी स्त्री चाहिए, आप बड़े प्रेम से इसको बुलाओ और कहो कि सुग्रीव तुम मुझसे छोटे हो, तुम मेरे लिए अंगद के समान प्रिय हो, बोलो तुम क्या चाहते हो। उसको कह दो तुम्हें राज्य चाहिए, तुम्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए, तुम्हें यहाँ का वैभव चाहिए, तो आप उसको राज सिंहासन पर बैठा दो, सुग्रीव के ऊपर छत्र लगा दो, सुग्रीव के चमर डुला दो, सुग्रीव को यहाँ का राजा बनाओ और आप और हम सब यहाँ सुग्रीव के जो परम मित्र राम आए हैं वो राम के साथ अपने भी मित्रता कर लेते हैं और राम से मित्रता कर राम से बड़े प्रेम से बात करके अपने लोग, अब किष्कंधा का जंगल तो है ही, जंगल में किसी गुफा में बैठ करके राम राघव राम राघव राम राघव पाही मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव रक्ष मां,
राम राघव राम राघव राम राघव पाही मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां,
राम राघव राम राघव राम राघव पाही मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां,
राम राघव राम राघव राम राघव पाही मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष
मां, राम राघव पाही मां,
राम राघव पाही मां,
राम राघव पाही मां,
राम राघव पाही मां।
कितना अच्छा हो ऐसे राम के पास जाकर हम उनकी शरण में चले जाएं, तो जैसे उन्होंने सुग्रीव पर कृपा की है ऐसे आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। राम की और सुग्रीव की मित्रता हुई है तो हे आर्य पुत्र, यही तो शर्त थी सुग्रीव की कि मुझे मेरा राज्य मिले, आप ये राज्य दे दीजिए। और आप जाकर जब उनसे प्रेम करेंगे तो राम का एक स्वभाव मैंने सुना है कि जो उसके पास जाता है वो किसी भी उसको किसी भी प्रकार से छिटकाते नहीं है, दूर नहीं करते हैं। दान मानादि सत्कार ही कुरुष्व प्रत्यनंतर, आप अपने भाई को बुलाओ, प्रेम से उससे दो बात कर लो, राजगद्दी पर बैठा दो, जल्दी से जल्दी आप राम के पास चले जाओ, इससे बढ़कर आपके जीवन में ऐसा समय दोबारा आने वाला नहीं है। समय समय की बात है आर्य पुत्र, देखो ये सुग्रीव ललकार रहा है, देखो कोई और व्यक्ति की ललकार नहीं सुन रहे, वो आपका भाई है, आपका छोटा भाई है। नान्या गतिर हस्तिते, आज ये जो समय मैं देख रही हूं इस समय में सुग्रीव के साथ मित्रता करने के अलावा और मुझे कोई आपकी गति दिखाई नहीं देती है। यदि आप जीवन में मैंने अपने किसी भी प्रिय कार्य के लिए आपको नहीं कहा, यदि आप मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हैं, यदि आपने मुझे सदाई हितेशी समझा है, तो मैं आपसे आज बहुत प्रेम से याचना करती हूँ, आज के लिए कम इतना करके तो देखो, आप सुग्रीव के साथ प्रेम करके तो देखो और राम की शरण में जाकर के तो देखो। हे महाराज, ये सब चीजें आपकी एकदम दूसरी हो जाएंगी, आपके मन में अभिमान नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, आपको ललकारने पर किसी प्रकार से आपके मन में चिड़न नहीं होगी, प्रसिद्ध है, प्रसन्न हो जाओ। जैसा मैंने कहा इस बात को आप प्रेम से सुनो और क्रोध मत करो। देखो सबसे पहली विजय आपकी यही होगी, आपके अंदर होगी, आप क्रोध को जीतो, फिर आप सुग्रीव का दिल जीतो और उसके बाद फिर आप राम के चरणों का आश्रय लेकर राम का प्रेम जीतो। जीतना ही है तो इन चीजों को आप जीतो। यदि आपने सुग्रीव को मार भी दिया आप हारे हुए हैं। पहली बात तो ऐसी है नहीं कि सुग्रीव का मित्र बड़ा प्रबल है, और यदि आप जीत भी गए तो भी आप हारने के समान हैं। ये आज आपके जीतने का मौका है प्राणनाथ, आप आज अपने हाथ से बाजी जाने मत दीजिए। कौशलराज स्वयं आज आपके और सुग्रीव के युद्ध को अपने हाथ में ले चुके हैं और कौशलराज के बाण के सामने कभी इंद्र भी टिकने वाला नहीं है। हे महाराज, ये आपको मैं अंतिम बार कहती हूं। ऐसी प्रार्थना करके तारा बाली के चरणों में गिर गई। लेकिन बाली तो भाई क्या करे, बाली तो क्रोध के अंदर भरा हुआ था। उसने अपनी रानी तारा को भर्षित करते हुए कहा कि तारे तू मेरे स्वभाव को जानती है, मुझे कोई शत्रु ललकारता है तो किसी शर्त पर मैं पीठ मुड़ने वाला नहीं हूं, उसके फटकार के शब्द में सुन नहीं सकता हूं। मेरे शत्रु के और वो भी मेरा भाई, मेरा भाई मेरे से शत्रुता करे यही काफी है। बाली का कोई शत्रु जिंदा है ये मेरी उस पर कृपा है, कृपा वो जिंदा है, नहीं तो बाली का शत्रु जिंदा नहीं रहता। तुम कहते हो कि सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठाओ, सुग्रीव अभी यहां मुझे फटकारता है, बोलता है, यही बहुत बड़ा काम है, वो जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं उस सुग्रीव का नाश करूंगा। देखो जो सूरवीर लोग होते हैं, जो किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते, जो युद्ध के अंदर कभी नहीं लौटते, उन लोगों को कोई जरा सा शब्द बोल देता है तो उनके लिए मरने के समान होता है। मैं नहीं सुन सकता तारे, मैं ये शब्द नहीं सुन सकता। सुग्रीव हो चाहे कोई हो, चाहे उसकी कोई सहायता करे या कोई ना करे, मैं नहीं सुन सकता हूं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझो मैं तो उसके साथ युद्ध करूंगा। युद्ध में वो मुझे मार दे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो हमको गर्जना करे और मैं उसकी जो है गुलामी करूं, संभव नहीं है। तुम्हें किसी प्रकार से इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए तारे कि राम उसकी सहायता करते हैं। नहीं नहीं, मैंने भी राम के विषय में सुना है। तारे तुम्हारा मेरे प्रति दूसरा भाव है ना, इसलिए तुमने इतनी बात कही है। सबसे बड़ी राम की बात तो यह है कि राम धर्मज्ञ है। इस बात में सब बात आ गई। राम जानता है कि सुग्रीव की और बाली की लड़ाई है, उसमें मेरा पड़ना धर्म नहीं है। अतएव जो पिता के आदेश का पालन करने वाला धर्म का जो अनुयायी है, वो इस प्रकार से कष्ट पाकर के भी धर्म की रक्षा कर रहा है, जो कृतज्ञ है, वो राम सुग्रीव का पक्ष लेकर मुझे क्यों मारेगा? ऐसा नहीं होगा। देखो तारे, घबराओ मत, रो मत, तुम अपने स्त्रियों के साथ, दासियों के साथ वापस अपने महल की ओर चले जाओ, वहां विश्राम करो। एक पतिव्रता स्त्री को जैसी बात कहनी चाहिए, जैसा करना चाहिए, तुमने कर दिया है। और देखो मैं अभी सुग्रीव को वापस खदेड़ करके तुम्हारे पास अभी आता हूं। तुम कोई भय मत करो, मैं सुग्रीव का घमंड दूर करूंगा। बाली ने ये तारे मेरी बात सुनो, तुमने बाली के लिए इतनी बातें कही है कि तुम सुग्रीव को लाकर यहां राजगद्दी पर बैठाओ, तो तेरे सामने ये बाली प्रतिज्ञा करता है कि जाओ मैं सुग्रीव के प्राण नहीं लूंगा। परंतु जो रण के ऊपर खड़ा हुआ है और जो ललकार रहा उसके साथ युद्ध न करूं, ऐसा संभव नहीं है। मैंने उसको पहले वृक्षों से मारा, लातों से मारा और वो आज वापस मेरे सामने वृक्ष और मुक्के उठा करके मेरे सामने ललकार लगाता है, मैं उसके गर्वीले शब्द को कैसे सुन सकता हूँ? क्योंकि मैं उसका प्रतिकार करने में समर्थ हूँ। जब प्रतिकार करने का सामर्थ्य न हो तब जाकर के मनुष्य को संधि करनी चाहिए। राजाओं का नियम है, ये राजनीति है। हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, अतः उस संधि करो, लेकिन मैं प्रतिकार कर सकता हूँ। देखो तारे, मैं अंतिम बार भी तुमको भी ये बात बोलता हूँ कि तुझे मेरे प्राणों की सौगंध है, अब मुझे कुछ मत कहना। सूरवीरों के लिए वापस लौटना संभव नहीं है। मैं जितने कदम युद्ध के लिए बढ़ चुका हूँ बढ़ ही चुका हूँ, मैं वापस अपने कदमों को नहीं घुमाऊंगा। अलम जित्वा निवर्तिष्ये तमाम भ्रातरम रणे, मैं केवल भाई को जीतने के लिए जा रहा हूँ तारे, मैं अभी लौट के आ जाऊंगा। तुम जाओ और अपने मन से भय को निकाल दो। तारा ने कहा कि हे प्राणनाथ, मेरी दृष्टि में ऐसा लगता है कि मैं आपसे अब अंतिम बार मिल रही हूं। इस प्रकार से तारा ने अपने पति की परिक्रमा की और उसके बाद वो विजय की इच्छा से शोक से मोहित हुई हुई अपने बहुत सी स्त्रियों के साथ घिरी हुई महल की ओर आ गई और जिस प्रकार से बिल से क्रुद्ध हुआ हुआ सांप निकलता है ऐसे अपने हाथ में गदा लेकर के बाली अपने महल से बाहर निकला। बाहर निकल करके आंख फाड़ फाड़ के चारों तरफ देखने लगा, लंबी लंबी श्वास लेने लगा, देखने लगा सुग्रीव कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है। इस प्रकार से सुसंवितम अवस्टब्धम सब शरीर को अच्छी तरह से कसा हुआ था और सब प्रकार से वो बड़ा सुसज्जित था, जैसे आग चमकती हो इस प्रकार से वो चमक रहा था। उस समय में उसने सुग्रीव को देखा, सुग्रीव वहां खड़ा है, तो सुग्रीव को देखा तो गाढ़ी गाढ़म परिदेह वास है, बड़ा क्रोधी बाली अपने वस्त्रों को ठीक ढंग से बना करके बड़ा कुपित हुआ हुआ और इंद्र के द्वारा दी हुई जो माला थी उस माला को पहना हुआ अपने मुट्ठी को बांध करके और सुग्रीव की तरफ लपकने के लिए उसने अपना हाथ ऊंचा उठाया, हाथ ऊंचा उठा करके और कहा कि हे सुग्रीव, तेरे प्राण का नाश करने के लिए ये मेरी एक मुक्की पर्याप्त है। इतने में ही सुग्रीव ने भी बाली से कहा कि ये मेरी मुक्की तेरे मुक्की को तोड़कर तेरा प्राण लेने के लिए पर्याप्त है। तेरी मुक्की एक काम करेगी तो मेरा मुक्का दो काम करेगा। इस प्रकार से दोनों अपने अपने मुक्की से दोनों लड़ लिए और अब तो आपस में बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। बाली के मन में उत्साह आया तो सुग्रीव के मन में भी बड़ा उत्साह था। उस समय में सुग्रीव और बाली पहले के समान नहीं, अब तो और ही विचित्र ढंग से पैंतरा बना बना करके लड़ने लगे। सुग्रीव निशंक होकर के एक साल वृक्ष को उखाड़ करके और बाली के पीठ के ऊपर जोर से उसका प्रहार किया। ऐसा लगा कि मानो इंद्र ने किसी पर्वत को गिराया है। बाली उस समय में एक बार पृथ्वी पर गिर गए और वो साल वृक्ष था, वो साल वृक्ष बाली के लगने के बाद टूट गया और बाली मूर्छित सा हुआ। फिर वो बाली खड़ा हुआ, बाली खड़ा होकर के और फिर जो है वो युद्ध करने लगा। देखो बाली ज्यों ज्यों युद्ध कर रहा था त्यों त्यों बाली के अंदर जोश बढ़ता चला जा रहा था। दोनों के दोनों भाई बड़े पराक्रम वाले, दोनों के दोनों भाई ऐसा लगने लगे कि दोनों सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश के अंदर युद्ध करते हों। एक दूसरे की कमी देखकर एक दूसरे की कमी का लाभ लेने में दोनों लगे हुए थे, एक दूसरे के प्राण के भी दोनों के दोनों प्यासे थे। इधर धीरे धीरे बाली तो बढ़ता चला गया और सूर्य पुत्र सुग्रीव धीरे 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 क्षीण होता चला गया, क्योंकि सुग्रीव का पराक्रम क्षीण हो रहा है और उसका घमंड भी क्षीण हो रहा है। फिर भी वह सुग्रीव अपनी तरफ से युद्ध तो करता है परंतु अपनी आंखों से इधर उधर देख करके राम जी को ये बताना चाहता है कि देखो अब मैं पिटाई खाने की तरफ जा रहा हूँ, अब ये मुझे मारेगा, अब मुझे ये पीटेगा। दर्शयामास राघवम, राम जी को उसने ऐसा ही दिखाया। वृक्ष है और दूसरे लड़ने के साधन है, उनसे खूब आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई होते होते ऐसा लगा कि मानो वृत्रासुर की और इंद्र की लड़ाई हो रही हो, ऐसा लगा कि मानो दो मेघ आपस में लड़ते हो, ऐसा लगने लगा कि कोई दो पर्वत चट्टाने आपस में लड़ते हो। ही यमानम अथा पश्यत सुग्रीवम वानरेश्वरम, इधर राम जी महाराज ने देखा कि ओहो अब धीरे धीरे हमारे सुग्रीव जी का बल क्षीण हो रहा है। राम जी महाराज ने दसों दिशाओं को देखा, सब दसों दिशाओं की तरफ देख करके, भाई निशाना तो बाली के लगाना था, आप दसों दिशाओं को क्यों देखते हो? इसलिए देखते हो कि देखो दिशाओं में देवता लोग रहते हैं, पितामह रहते हैं, इन सब को बता रहे हैं कि देखो अब मैं यदि बाली को मारता हूं तो आप लोग कोई दोष मत देना। और सूर्य पुत्र तो बाली है, सुग्रीव है, इंद्र पुत्र बाली है, आते इंद्र भी देख लेवे कि मेरे लड़के को, सूर्य भी देख लेवे अपने लड़के को, और उस समय में क्या समझ करके मैं पक्ष ले रहा हूँ, तुम अपने अपने बेटों को संभाल लेना, ऐसे करके दसों दिशाओं को देखा है। और देखने के बाद भगवान ने अपना जो बाण था वो बाण उन्होंने कान तक धनुष की डोरी को खींच करके पूरे वो निशाने पर आए, और इधर वे दोनों लड़ ही रहे हैं, उस बाण को ठीक निशाने पर लगाकर उनको ये तो समझने में आ ही रहा है कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ठीक ढंग से निशाना लगाकर जब सुग्रीव एक जगह अटक ही गया और बाली उसके साथ में पैंतरा बदलने के लिए वह अपनी तरफ से कोई लड़ने के जिस स्थिति में आ रहा है वो स्थिति ऐसी थी कि बाली के वहां पर छाती साफ दिख रही थी, और भगवान राम ने वो बाण कस करके और बड़े वेग के साथ उस बाण को छोड़ा, जैसे कोई प्रलय काल के अंदर चक्र छोड़ा जाता हो, जैसे कोई जहरीला सांप फपक करके जाता हो, जैसे कोई जो है दूसरे प्राणी एक दूसरे पर लपकते हो, तो अपनी तरफ से जो वेग से जाता है उस वेग के द्वारा वो ऐसा तीखा तीखा वो बाण गया। वो बाण के जाने से धनुष में जो शब्द हुआ, सारे पक्षी अवाक रह गए, सारे पशु अवाक रह गए। पक्षी थे आकाश में, वो जहां के तहां अपने पंख फैलाकर स्तब्ध रह गए। पशु थे जो दौड़ रहे थे इधर उधर, वो कंदराओं में जा जा करके छिप गए। और वो जो बाण सनसनाता हुआ गया और जाते ही वो बाली की छाती में लगा और छाती को उसने पार कर लिया और छाती में अटक गया। उस बाण के लगने से बाली यूं देखने लगा, देखते देखते उसको बड़ा चक्कर सा आया और वो धड़ाम से गिर गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई पूनम पर उत्सव होता हो और कोई इंद्रध्वज नीचे गिरता हो, ऐसे वो गिर गया। ओहो, उस समय में उसकी कोई शोभा नहीं थी, उसका कंठ वाष्प से अवरुद्ध हो गया और बड़े आर्त स्वर में बाली बोलने लगा। राम जी महाराज उस समय में उस बाण को जब छोड़े वहीं पर खड़े रहे और राम के नाक से लंबे लंबे श्वास निकलने लगे। राम के पास में राम के लक्ष्मण वगैरह भी उस समय पास में नहीं आए, राम जी को इतना क्रोध आया हुआ था। विचेतनो वा सवसुनु राहवे, और वो बाली बाण के लगने के बाद बहुत कष्ट पाता हुआ बेहोश हो गया। जब इस प्रकार से उसके बाण लगा पृथ्वी पर आकर के गिर गया, उस समय में जितने बानर वहां थे ये सब चुपचाप खड़े रहे। कभी कभी जिस प्रकार से आकाश पर कोई चंद्रमा गिरता हो अथवा आकाश में चंद्रमा ग्रस्त होता हो तो जैसे आकाश की शोभा होती है, ऐसे आज बाली की शोभा हो रही थी। उस महात्मा का शरीर मिट्टी के अंदर दूषित हुआ हुआ था, परंतु उसके मुखमंडल का तेज ज्यों का त्यों था, उसके प्राण, उसका तेज, उसका पराक्रम और इंद्र के द्वारा दी हुई माला ये बिल्कुल मुरझाए हुए नहीं थे। उस समय में एक बड़ी विचित्र बात थी, इंद्र ने अपने पुत्र बाली को ये कह रखा था कि जब तक ये मेरी माला तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे और तुम्हारी कांति भी कभी म्लान नहीं होगी। आज उस इंद्र के द्वारा दी हुई माला को, क्योंकि उसके बाद कभी वो घबराया ही नहीं, कभी वो मूर्छित हुआ ही नहीं, सब पर विजय विजय प्राप्त की थी, आज उस माला को धारण किया हुआ वो बाली अपने पिता इंद्र के वरदान को भोग रहा है। संध्या के समय में जिस प्रकार से लाल लाल बादल आकाश में शोभित होते हैं, ऐसे वो लाल बानर बाली पृथ्वी के ऊपर पड़ा हुआ शोभा दे रहा था। तस्य माला च देहश्च मर्मघातिश्च यशर त्रिदेव रजिता लक्ष्मी, तीन ही चीज की शोभा थी, एक तो शरीर की शोभा थी और एक उस माला की शोभा थी और एक छाती में लगे हुए बाण की भी बड़ी शोभा हो रही थी। ये वो गिरा हुआ है तब भी शोभा दे रहा है, शरीर भी जमीन पर गिरा हुआ, माला भी गिरी हुई और उसके छाती में लगा हुआ बाण भी तो गिरा हुआ ही, तीनों की गिरे हुए की भी शोभा हो रही है। वो ऐसा विलक्षण शस्त्र था कि वो शस्त्र तो भाई मृत्यु को तो प्रदान करने वाला था ही, स्वर्ग मार्ग प्रभावनम, स्वर्ग की तरफ ले जाने वाला भी था। राम का जो बाण था, जब राम ने उसको बाली की छाती में लगाया तो उसने राम तो परम गति का आह्वान किया, अर्थात इसको परम गति मिले। आज बाली ऐसा दिखाई दिया जैसे देवलोक से पटका हुआ ययाति पृथ्वी पर पड़ा हो। आज ये बाली ऐसा दिखाई दिया कि पृथ्वी के ऊपर साक्षात सूर्य ही यहां आकर के गिर गया हो। आज ऐसा लगा कि जैसे महेंद्र आकर के गिर गया हो, या ऐसा महेंद्र पुत्र बाली, महेंद्र माने इंद्र, वो इंद्र जो है इंद्र का पुत्र बाली यहां पर गिरा हुआ दिख रहा है। अब धीरे धीरे बाली के पास में राम जी महाराज और लक्ष्मण जी दोनों धीरे धीरे उसके पास आए और उसके पास में आकर उसे देखने लगे। लक्ष्मण जी के कंधे पर राम जी ने हाथ रख रखा है। दोनों वीर बड़े पराक्रमी राम और लक्ष्मण बाली को देख रहे हैं। बाली ने अपने टिमटिमाते नेत्रों से लक्ष्मण और राम को देखा, जिन आंखों में आंसू भी है, जिन आंखों में क्रोध भी है और जिन आंखों के अंदर बहुत कुछ है, माने उसकी आंखों में मद भी था। जब वो रवाना हुआ था मदोन्मत्त था, मद भी था। कहते ये सब जिसकी आंखों में थे, ऐसे वो बाली राम को देखने लगे, लक्ष्मण को देखने लगे और उसके बाद भूमि के ऊपर छाती में जहां बाण लगा है जाहिर सी शब्द निकलने वाला है, इसलिए वह बहुत घायल हुआ हुआ बाली राम के सामने बड़े गर्वीले और मार्मिक तथा सार्थक शब्द कहता हुआ अपनी बात को रख रहा है। हे राम, तुम तो एक राजपुत्र हो, तुम देखने में बड़े सुंदर मालूम देखते हो। मैंने तो सुना था कि तुम में अनेक गुण हैं, परंतु तुमसे जो युद्ध नहीं करता है, जो तुम्हारी ओर देखता भी नहीं है, उसको इस प्रकार बाण से मारने में आपके अंदर कौन सा गुण जागृत हुआ है? आपके बाण से एक निरपराध प्राणी मरा है, ये आप कौन सा गुण कर रहे हैं? आप बड़े कुलीन हैं, आप सद्गुणों की खान हैं, आपका चरित्र बड़ा उज्जवल है, आप बड़े दयालु हैं, आप प्रजा का हित करने वाले हैं, आप समय और परिस्थिति को देखने वाले हैं, आप अपने व्रत में निष्णात हैं, पक्के हैं, दया तो आप में कूट कूट करके भरी हुई है, ऐसी बातें मैंने आपसे, आपके विषय में लोगों से बहुत सुनी है। मेरे मन में भी आपके प्रति यही धारणा थी कि संसार में आपके समान कोई यशोधर नहीं है। राजाओं में जो जो गुण होता है वो आप में है। आप अपने इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, आप अपने मन का शासन करने वाले हैं, आपके अंदर क्षमा है, आप में धैर्य है, आप में सत्य है, आप में पराक्रम है, ये आप में गुण है। और दुष्ट आचरण करने वाले अपकारियों को दंड देना भी आपका गुण है। मैंने तो सदा आपके गुणों ही गुणों का ध्यान किया, लेकिन आज आपने मुझे इस अवस्था में बाण लगा करके कौन सा यश अर्जित किया है, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं दूसरे के साथ युद्ध कर रहा था, मेरी और सुग्रीव की लड़ाई थी, राम तुमसे तो मेरा कभी बैर ही नहीं था, मैं तो तुमको बहुत पहले से ही भी जानता था, मुझे आपने ये बाण क्यों मारा? आप तो सबसे बड़े धार्मिक हो, धर्म के ध्वजा हो, और आज आपने अधार्मिक होकर ये काम क्या कर दिया? हे राम, कभी कभी मनुष्य कुएं को भूल जाता है कि यहां कुआ है, हरी भरी दूब रखी हुई है बनावटी, और तिनके उस पर रखे हुए हैं, और उस पर आदमी चला जाता है और कुएं में गिर जाता है। ऐसे ही मैं तुम्हारे द्वारा ठगा गया, एक साधु का वेश बनाए हुए आप तो एक छिपी हुई आग निकले, आप तो छिपे हुए वो सर्प निकले कि जो हमारे ही वस्त्र पहनने के उन्हीं में आकर छिप जाते हो। आपने तो धर्म का एक तरह से स्वांग बनाया है, धर्म की डुगडुगी बजाई है, परंतु धर्म तो आपने मेरे सामने तो किया नहीं है, केवल मैंने सुना सुनाई है। मेरी अयोध्या से कभी लड़ाई नहीं थी, यहां वन में आप आए तभी मैंने कभी आपका कोई प्रतिकार नहीं किया, कभी मैंने आपके साथ कोई बैर विरोध का काम नहीं किया। मैं आपको सुनता था, जानता भी नहीं था आपके साथ कौन अपराध किया कि आपने मेरे छाती पर ऐसा तीखा बाण लगाया। मैं एक बानर हूं, मैं मेरा अपने जंगलों में रहता हूं, यहां के फल फूल खाता हूं, यहां मैं किसी से कोई लड़ाई करता नहीं हूं, दूसरा मुझसे युद्ध करता है तो उससे डरता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है। परंतु हे राजपुत्र, तुमने यहां आकर मुझसे क्यों ये युद्ध किया, और मुझे मार करके तुमने कौन सा अच्छा काम किया? क्षत्रिय ऐसा नहीं करते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं वो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, परंतु अधर्म को आगे रखकर कभी युद्ध नहीं करते। राम तुमने बड़ा क्रूर कर्म किया है, तुम राघव कुल में पैदा हुए, अपने को तुमने धर्मवान कहा है, लेकिन तुम्हारे स्वरूप के अनुसार तुमने कार्य नहीं किया। बार बार मेरे मन में पीड़ा हो रही है, साम दान क्षमा धर्म सत्य ये राजाओं के गुण होते हैं। लेकिन तुमने मैं मुझमें यदि कोई अवगुण भी देखा होगा, कोई मेरे साथ बैर विरोध भी हुआ होगा, तो कम से कम एक बार मुझे बोलना तो चाहिए ना कि देखो बाली तुम ये अपराध करते हो, देखो बाली तुमने हमारे ये विरोध किया, कुछ तो आप बोलते, आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा और सीधा ही आपने बाण मार दिया। ये बात आपके कौन से शास्त्र में है, कौन से राजा के यहाँ ये बात लिखी हुई है? लड़ाई के लिए या तो पृथ्वी को लेकर लड़ाई होती है या सोने को लेकर लड़ाई होती है और या फिर स्त्री को लेकर लड़ाई होती है। ये लड़ाई के तीन कारण है, एक तो भूमि, एक सोना और एक स्त्री। जर जोरू और जमीन, तीन के लिए लड़ाई मैंने सुनी है। अपने तो तीनों ही बातों को लेकर कोई विरोध नहीं है। मैं वानर, आप मनुष्य, आप नागरिक, मैं वनेचर, आप तपस्वी, मैं खल कामी बानर,